जिंदाबाद दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं आपके सामने हमसे है देश की एक नई और खास कड़ी लेकर। मैं हूँ कामायनी।
और मैं हूँ कबीर। वैसे कम्मो, श्रोताओं को ये नहीं बताओगी कि आज की कड़ी खास क्यों है?
बिल्कुल बताऊंगी। ये कड़ी खास इसलिए है क्योंकि आज हम जरा पीछे मुड़कर देखेंगे और इतने लंबे सफर की कड़ियां आपस में जोड़ेंगे,
यानी हम जाएंगे पिछली कड़ियों की यात्रा पर। और आपके और हमारे इस अद्भुत संवाद की बहुत सी अहम बातें, लोकतंत्र से जुड़े कई अनछुए पहलू और आपकी और हमारी ढेरों यादें बटोर कर लाएंगे।
दोस्तों, आप सब लोकतंत्र का हिस्सा हैं, सभी इसकी महत्ता को समझते भी हैं, इसीलिए बेताल छब्बीसी की शुरुआत की कुछ कड़ियां मुझे याद आ रही हैं।
जी हाँ, जब बुलबुल बाग के तानाशाह शेर खान का तख्ता पलट हुआ और बुलबुल बाग के बाशिंदों ने सरकारी ढांचों पर वाद विवाद किया और लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए नया नेतृत्व ले आए।
बेताल छब्बीसी रे,
इससे अच्छा तो समाजवाद है, यानी सोशलिज्म। आपकी सबकी बकरियों को एक बाड़े में रखेंगे, जिसका ख्याल रखने का जिम्मा आप पर होगा। आपको आपकी जरूरत के हिसाब से दूध दिया जाएगा, यानी जिस परिवार में चार सदस्य उन्हें 4 लीटर, जिनके यहाँ 10 सदस्य उन्हें 10 लीटर।
तो इस तरह सभी ने लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को ही चुना। और कबीर, तुम्हें वो किस्सा याद है जब घुमक्कड़ घिरनी और उसकी सारस बहनों ने मिलकर अपना अधिकार हासिल किया था?
हाँ।
मेरे हिसाब से वो बुलबुल बाग के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत थी।
अरे कमो, तुमने क्या याद दिला दिया। तो चलो सुनते हैं इस मजेदार किस्से का एक छोटा सा अंश।
बेताल छब्बीसी रे।
पर ये बुलबुल बाग के लोकतंत्र का हिस्सा कैसे बन सकती है? ये तो घुमक्कड़ है, 6 महीने यहाँ और बाकी कहीं और। पर लोकतंत्र के चुनाव में ये कैसे लड़ सकती हैं?
बिल्कुल लड़ सकती हैं। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र में ऐसा हो सकता है। हर नागरिक के हाथ में पूरी ताकत दी जा रही है और हमारी घिरनी बहनों की ये सालाना जरूरत है कि वो अपना दाना पानी ढूंढने दूसरे बागों में जाती हैं। पर हर साल 6 महीने के लिए लौट कर भी तो आती हैं।
और इसके अलावा हमने कुछ जानकारों के विचार भी सुने, जैसे सोसाइटी फॉर रूरल अर्बन एंड ट्राइबल इनिशिएटिव से सत्यम श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमें समाजवाद के बारे में बताया।
देखिए, समाजवाद की प्रासंगिकता कभी भी खत्म नहीं होने वाली, ऐसा मैं मानता हूँ। और विशेष रूप से तब जबकि आर्थिक मामलों में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है, ऐसे मामलों में जहाँ संसाधनों पे, उत्पादन के साधनों पे कुछ खास पूंजीपतियों का नियंत्रण होता जा रहा है, अधिकांश जनता के हाथ से वो संसाधन खिसकते जा रहे हैं, ऐसे में समाजवाद एक बहुत ही प्रासंगिक और जरूरी व्यवस्था के तौर पे हमारे सामने है।
और याद है कबीर, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी बात की थी।
हाँ।
वो कैसे बनी और भारत के संविधान पर तो लंबी चर्चा की थी, याद है ना तुम्हें?
अरे याद कैसे नहीं होगा, खासकर B.R. अंबेडकर जी का संवैधानिक बैठक में दिया हुआ प्रसिद्ध भाषण, वो तो मुझे बार बार याद आता है।
देश विदेश से।
But my fear, which I must express clearly,
हमारी मुश्किल आने वाले कल की बजाय आज की है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती है हमारे देश की विविधता, जिसे साथ मिलकर निर्णय लेने हैं और ऐसे मार्ग पर साथ चलना है जो इस अनेकता से एकता तक का रास्ता आसान कर दे।
टेक अ डिसीजन इन कॉमन एंड मार्च इन अ कोऑपरेटिव वे ऑन दैट रोड व्हिच इज बाउंड टू लीड अस टू यूनिटी।
और हाँ कमो, हमने बात की थी लोकतंत्र के 3 स्तंभों की, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
नज्मों और गानों के साथ चला हमारा ये सफर।
अरे नजीर अकबर आबादी की नज्म आदमी नामा।
दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबखां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां।
और कबीर हमने मानवाधिकार की बात भी छेड़ी थी, उसके इतिहास को भी जाना था।
हाँ, और साथ ही ये भी जाना था कि कैसे ये अधिकार विकसित हुए और कैसे आज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मजबूत रीढ़ लिए खड़े हैं।
और इन अधिकारों में महिलाओं के लिए समान दर्जे का ऐलान करता ये गाना सोना महापात्र की बुलंद आवाज में। हमने कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में भी चर्चा की जिन्हें हाल फिलहाल में ही नए कानूनों के तहत पारित किया गया, जैसे राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार और राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। कबीर, हमने मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में भी तो जाना था रामाकृष्णन जी से।
दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे मीडिया सेक्टर को मान लीजिए एक खुद पे कंट्रोल करने का एक मौका दिया जाता है कि वो खुद निर्णय करें कि कौन से कार्यक्रम बन सकते हैं, किन के लिए बनाए जा सकते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और जो दर्शक और जो श्रोता हैं उनको हक दिया जाता है कि वो कमेंट कर पाएँ कार्यक्रम के ऊपर, ये बताएं कि उनको क्या सुनना है, क्या देखना है, किस तरीके की पेशकश होनी चाहिए।
हमारे कार्यक्रम में मजदूरों के अधिकारों पर भी तो चर्चा हुई और हमने कुछ चौंका देने वाले तथ्यों को भी जाना कि कैसे करीब 1,90,00,000 लोग निजी संस्थाओं के हाथों और करीब 20,00,000 लोग राज्य या विरोधी गुटों के हाथों शोषित होते हैं। 40,50,000 लोग यौन शोषण का शिकार होते हैं।
जादुई जामुन और मजदूर चींटी चुनने की कहानी वो भला कौन भूल सकता है।
बेताल छपी सिरे।
पर बात सिर्फ जादुई जामुन की नहीं है, बात चुन्नी जैसी मजदूर चींटियों की है जिनके साथ न जाने कब से अन्याय होता आया है। चुन्नी जब से बिस्तर पर है तब से जादुई जामुन तो दूर, उसका दाना पानी भी बंद है। टीले बनवाने वाले इस बात का ध्यान नहीं रख रहे कि मजदूर चींटियों की देखभाल की जिम्मेदारी भी उनकी है।
और कबीर, तुम्हें याद है हमने सतर्क नागरिक संगठन की अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी जी से भी बात की थी?
हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। हम न्याय पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही अहम मुद्दों को उठाया था।
जानकार है कहते।
मुझे लगता है कि सूचना का अधिकार कानून जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल ही जो हमारे सबसे पिछड़े और सबसे गरीब वर्ग हैं उन्होंने किया है। अभी हाल ही में हमने एक शोध किया था, एक रिसर्च की थी जिसमें पूरे देश में देखा गया कि सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो रहा है और कौन कर रहा है। तो ये जो रिसर्च हुई, जो स्टडी हुई पूरे देश में, उसमें ये निकल के आया ज़्यादातर सूचना मांगने वाले लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ऐसे ऐसे मजदूर, ऐसे किसान, इन लोगों ने सूचना के अधिकार में अर्जियां लगा के अपने बिल्कुल मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी ली है और उस जानकारी को इस्तेमाल करके सरकार को जवाबदेह बनाया है, जिससे कि उन्हें न्याय मिले, जिससे कि उन्हें जो उनके अधिकार हैं जो नहीं, जिनसे उनको वंचित रखा जा रहा है वो मिले, उनके जो एंटाइटलमेंट्स हैं जो अलग अलग स्कीम्स में उनको मिलने चाहिए, चाहे वो पेंशन की स्कीम हो चाहे राशन की स्कीम हो, वो उनको मिले। और लोगों ने इसका इस्तेमाल करके अपने अधिकार लिए हैं और अपनी जो न्याय की लड़ाई है उसको आगे बढ़ाया।
इस तरह हमने लोकतंत्र के कई पहलुओं को जाना और समझा
और इनका निचोड़ हमें भारत के संविधान के पहले पन्ने यानी प्रीएम्बल में भी मिला।
हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया,
हमने कहा आजाद हैं अब, दिल की सुनेंगे यहां, राहें बनाई हम ही, हमारी मंजिल चुनेंगे यहां, कोई न छोटा कोई बड़ा ना, मिलके चलेंगे यहाँ।
अधिकार सबको जीने का हो, अधिकार सबको जीने जीने का हो सर ना झुकेंगे हम लोग भी।
कभी राज हमारे कार्यक्रम हमसे है देश की आखिरी प्रस्तुति है, पर मुझे जरा भी रंज नहीं है।
मुझे पता है क्यों?
क्यों?
क्योंकि हमने बहुत सारे दोस्त जो बनाए।
हाँ, और तुम जानते हो हमारे क्विज के सवालों के लिए हमें 5,000 से भी ज्यादा जवाब मिले हैं।
क्या बात कर रही हो?
और आप में से बहुत से दोस्तों ने हमें फोन करके भी हमसे है देश कार्यक्रम को सराहा है।
बहुत अच्छा लगा सुनके। और पहला चीज जो आता है कि आपको अपने देश के लिए ओनरशिप आती है, ऐसे लगता है कि मैं भी एक हिस्सा हूँ इस पूरे देश का।
अब हमसे है देश में नागरिक तो हर तरीके के, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मिडिल एज लोग भी हैं, और सब मिलके हमारा देश बनता है। तो ऐसा प्रोग्राम बनाना जो हर एज ग्रुप के लोगों को पहुंच पाए, उन सबके दिमाग में, मतलब उनको सोचने पे मजबूर करे। तो जैसे आपके वो विक्रम बेताल आपने मतलब कैरेक्टर्स यूज़ किए थे, तो उनको यूज़ करके आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और रिट्स और इन सब को लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की थी। तो ये अच्छा तरीका था बहुत,
कि कोई भी देश जो है उसके सिटीजन से बनता है, और उसके सिटीजन्स जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो एक्शंस लेते हैं, उसके बेसिस पे हमारा देश का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बारे में वैसा लोग ओपिनियन और ख्याल रखते हैं।
लोकतांत्रिक देश के को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। देश लोकतांत्रिक है तो निश्चित रूप से हम सभी नागरिकों के द्वारा ही ये देश बना है, तो ये लोकतंत्र की बात ही ध्यान आती है।
फर्स्ट चीज़ जो मेरे मन में आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि हमसे है देश एकदम से ये जो ये लाइन ही है बहुत खूबसूरत लाइन है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत अच्छा एहसास होता है मेरे को।
जब हमसे है देश, जब हम ये कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियाँ आती हैं कि उन नियम कानूनों के साथ हम कितना उस किस रूप में उसको लेते हैं, और हम कितना अपने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात फिर आती है कि उन ड्यूटीज़ को के प्रति हम कितने तत्पर हैं, कितने सकारात्मक रूप से हम अपना सहयोग दे रहे हैं।
और हाँ, विनर्स के नाम सभी श्रोता हमारी फ्री कॉल सर्विस द्वारा जान सकते हैं। आप हमें 07966210428 पर मिस कॉल दें और हम वापस कॉल कर आपको जीतने वाले सभी श्रोताओं के नाम बताएंगे।
वैसे देखा जाए तो इस सफर में जो भी हमारे साथ जुड़े वो सब एक तरह से विनर्स ही तो हैं।
हाँ कबीर, हम सभी हर रोज अपने जीवन की मुश्किलों से जूझते हैं, उनसे लड़ते हैं, हम सामाजिक बुराइयों का सामना करते हैं, देश दुनिया में हो रहे अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और आशा है हमसे है देश से जुड़कर आपका विश्वास, आपकी सोच और बुलंद हुई होगी। ये कारवां चलता रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें ईमेल जरूर करें। freedom@rdiosyncmedia.org हमारा ईमेल आईडी है। freedom@rdiosyncmedia.org। और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, जिंदाबाद।
खुश रहिए, आबाद रहिए
और जागरूक रहिए।
हमसे है देश की शान, हमसे हर जुल्म के खिलाफ है आवाज, हमसे हमसे है देश की शान, हमसे हर जुल्म के खिलाफ है आवाज, हमसे देश है हमसे हम